इंद्रियों के भोग जान बुझ करके कोई न भोगे या वो मिले ही न, तो दोनों तो एक ही हुआ है ना। एक जान बुझ करके तपस्वी बनता है, भोगों को छोड़ करके राज छोड़ करके वन में चला जाता तपस्या कर, और ये व्यक्ति घर में है लेकिन चाहते हुए भोग मिलता ही नहीं, कष्ट तो समान हो रहा है। लेकिन दरिद्र व्यक्ति यदि उसी को यह मान ले कि हमारे कर्म का फल है और बीत रहा है, हम धीरे धीरे मुक्ति के पथ पर जा रहे हैं, तो तत् ही तस्य परम तप है, वही उसके लिए परम तप, उसके लिए अलग तप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बड़े शौक से बड़ी निष्ठा के साथ जो लोग तप करते हैं, उस तप का मुकाबला कर सकता है दरिद्र का कष्ट, वो जो कष्ट है वो तप ही। और दूसरी बात है कि दूसरे जो तपस्वी होते हैं, तप तो करते हैं लेकिन उनमें स्तंभ होता है, घमंड होता है, गर्व होता है, किसी के साथ झुकते नहीं है और मद हो जाता है। प्रायः सुना गया है कि तपस्वी बहुत क्रोधी होते हैं, है ना। जो साधु होते हैं तपस्या करते हैं तो उनका अभिमान बढ़ता है, घटता नहीं है, परंतु दरिद्र जो तप करता है तो शुरू से ही अभिमान नहीं रहता है, ऊपर से तप हो तो कहां से अभिमान आएगा। तो यह मुक्त सर्व मदैर्य, सब मद से मुक्त रहता है, विद्या मद, धन मद, जाति मद, कई मद से मुक्त रहता है, मुक्त सर्व मदैर्य। और ऐसा व्यक्ति तप करे तब तो उसका तप कितना सुष्ठु है, कितना सुंदर है, इस प्रकार का तप होना चाहिए। दूसरे तपस्वियों में अभिमान होता है, मैंने इतना त्याग किया है, मैं त्याग किया हूँ, त्याग करके कर रहा हूँ, मैं इतना दिन तप करा हूँ, किया हूँ, खड़ा रहा हूँ, ये रहा हूँ, वो रहा। जैसे दुर्वासा जी महाराज युधिष्ठिर के पास गए थे, तो केवल नहीं अम्बरीश महाराज के पास, इसी मथुरा में वो गए थे, और अम्बरीश महाराज ने कहा कि आप बहुत सौभाग्य की बात है, द्वादशी के दिन आप हमारे अतिथि हुए, मैंने बहुत सुंदर व्रत किया है, तो आप भोजन कर लें, प्रसाद ले लें, इसके बाद मैं उच्छिष्ट पाऊंगा, पारण करूंगा। उन्होंने कह दिया अभी मेरा कुछ कृत्य बाकी है, मैं जा रहा हूं जमुना जी, आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। तब तक द्वादशी का समय बीतने लगा, तो जैसे तैसे अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ आदि के अनुशासन से, शास्त्रज्ञों के कहने से महाराज अम्बरीश ने जल पी लिया, भगवान का चरणोदक पी लिया, और उसके बाद दुर्वासा आए तो इतनी शक्ति है कि अपने योग बल से, अपने ज्ञान से वे जान गए कि अम्बरीश भोजन कर लिए, पर ये नहीं जान पाए कि वे व्रत की पूर्ति के लिए किए हैं, और भोजन नहीं भी था जल पीना, परंतु इतने पर ही उनका क्रोध भभक उठा, और इतना क्रोध हो गया कि महाराज अम्बरीश का वध करने की चेष्टा किए, जटा उखाड़ कर कृत्या उत्पन्न किए और कहे मार दो, जान से जला दो, खत्म। बाप रे, तो थोड़ा सा आधा घंटा लेट भोजन दिया जाए तो इस पर साधु को इतना क्रोध हो सकता है, और वो भी महाराज अम्बरीश केवल जल पिए थे, जल पीना भोजन भी है नहीं भी भोजन, क्यों क्रोध हुआ। वास्तव में महाराज अम्बरीश की कीर्ति बढ़ाने के लिए सब भगवान की व्यवस्था थी, दुर्वासा मुनि का व्यक्तिगत इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन ऐसे सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो तपस्या का इतना बड़ा अभिमान है कि इतने बड़े भक्त की जान मारने के लिए वो तैयार हो गए, और इस कारण से उनकी जो दुर्दशा हुई वो तो सबको विदित। तो गरीब व्यक्ति में यह अभिमान नहीं होता है कि मैं दुख भोग रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, तपस्वियों में तो अभिमान हो जाता है मैं तप कर रहा हूं। कभी कभी किसी को कहता है उसके पास क्या है कि वो छोड़ेगा, मैं छोड़ा हूं, मैं ये छोड़ दिया, मैं वो छोड़ दिया, मैं ये छोड़ दिया, मैं ये छोड़ दिया, मैं इतना सुखमय भवन बॉम्बे में छोड़कर वृंदावन में घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्या छोड़े हो, बहुत छोड़ दी। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि किसी के पास क्या है कि वो छोड़ेगा, छोड़ना केवल अहंकार है, वास्तव में किसी के पास कुछ है नहीं और न किसी का कुछ है, सब कुछ तो भगवान का है, केवल अभिमान छोड़ना है नहीं किसी के पास कोई चीज, भावना बनी हुई है कि मेरा है, ये है वो है, जो कहीं ढोकर ले नहीं जा सकता, मरने के बाद नहीं ले जा सकता, जीते समय भी सब जगह ले नहीं जा सकता, लेकिन भावना है कि मेरा है मेरा है मेरा। तो गरीब व्यक्ति को कष्ट होता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं एक बहुत अच्छा तपस्वी, तो तपस्वियों से यह विशेषता है दरिद्र तपस्वी की, इसीलिए नारद जी ऊपर कह रहे हैं दरिद्रो निरह स्तंभ अहम स्तंभ निह अहम स्तंभ। स्तंभ का अर्थ होता है खंभ या ठूंठ वृक्ष, स्तंभ, तो स्तंभ शब्द का पर्यायवाची है, मतलब उसका अर्थ है किसी के आगे झुकने वाला नहीं, और अहम स्तंभ यहाँ शब्द दिया गया है, केवल स्तंभ भी काफी है लेकिन अहम स्तंभ, मैं कुछ हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये हूँ वो। एक बार हमारे गांव के पास दूसरे गांव में दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, तो गांव के स्टैंडर्ड से एक व्यक्ति थोड़ा धनी था, दूसरा बिल्कुल गरीब था, तो झगड़ा में वो लोग बात कर रहे थे, धनी आदमी कहता है तुम मेरे साथ क्या बात करोगे, साल भर तुम्हारे परिवार का जितना खर्च है उतना केवल मेरे दवाई में खर्च होता है, तुम्हारे परिवार के भोजन में जो खर्च होता है, कपड़ा में, सब में, उतना मेरे दवाई में खर्च होता है, ये कौन प्रशंसा है, इसका मतलब तुम बहुत बड़े रोगी हो। इस तरह का अभिमान होता है वास्तव में, मैं दवाई किया हूँ, मेरा भाई ऑपरेशन हुआ है, भाई ऑपरेशन करते हैं बाईपास, मेरे बाईपास सर्जरी हुआ है, कई बार कपड़े निकाल करके दिखाते हैं, देखो तो और काट दिया जाए शरीर तो और घमंड बढ़ रहा है, मैं ऐसे हूँ, मेरी चिकित्सा यहाँ नहीं हुई, मैं बंगलोर गया, ये किया वो किया, ऐसे यह स्तंभ है अहम स्तंभ, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। श्रील प्रभुपाद एक कथा कहे हैं कि एक बार एक राजा के यहाँ रानी बीमार पड़ गई और उसी दिन संजोग से नौकर बीमार पड़ गया, तो राजकीय डॉक्टर बुलाया गया, सरकारी डॉक्टर बुलाया गया कि जांच करो, क्या चेकअप करो, तो चेकअप किया तो रानी का बुखार 101 डिग्री था और नौकर को ज्यादा बुखार आ गया था, उसको 104 या 105 डिग्री ऐसे बुखार। इसके बाद राजा के पास ब्यौरा आया, रानी भी सुनी कि डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दिया है, बुखार की डिग्री नौकर को ज्यादा है, तो रानी सुनते ही रंज हो गई, तो ये कैसा नॉनसेंस डॉक्टर है, हमको 101 डिग्री दिया और हमारे नौकर को 104 डिग्री, कोई उपाय करो कि हमारा बुखार बढ़े, ऐसा वो कहने लगी, मैं नौकर से कम रहूंगी, बुखार भी आया तो मुझको ज्यादा आना चाहिए, इस तरह से वो कहने लगी। तो परेशानी भी हुई तो हमारी बड़ी परेशानी होनी चाहिए, मैं बड़ा व्यक्ति तब न बड़ापन रहा, नहीं हम मान लीजिए बीमार पड़े, हम बड़े आदमी हैं और केवल 50 पैसे के टैबलेट से हमारा रोग दूर हो जाए तो नाम क्या होगा, जब उसमें लगे 2-4 लाख पैसा लगे, इधर उधर शोर शोर नाम हो तब माना जाए हाँ भाई बीमार पड़े थे, बड़े आदमी थे तो अच्छा बीमार पड़े, और नहीं तुलसी का काढ़ा ही पी लेने से बुखार दूर हो जाए तब क्या बुखार है। तो इस तरह अहम स्तंभ मैं कुछ हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरा रोग समान है, चाहे मेरा ये ऐसा है वो ऐसा है, किसी भी विषय में वे एक अपना रिजर्वेशन रखना चाहते हैं, मैं ऐसा हूँ, ये हूँ। और मुक्त सर्व मदैरी है, और बहु सर्व मद रहता है, जाति मद, जैसे चार मद बताया गया है, विद्या मद, जाति मद, धन मद और सुंदरता का मद। तो सुंदरता के मद को तो कोई खास मद नहीं रखा गया, तीन ही मद प्रसिद्ध है, धन मद, विद्या मद और जाति मद। मैं इतने बड़े वंश में जन्म लिया हूँ, वंश परंपरा से हम लोग बड़े हैं, ये है वो है, ऐसे हैं वैसे। कितने लोग इस भावना में रहते हैं कि मैं बड़ा हूँ इसलिए अपने साथ कहीं कुछ खर्च करना होगा तो बहुत लोगों को बैठा करके और खर्च करते हैं इस अभिमान में कि हम बड़े हैं, हम अकेले नहीं खाते हैं, और 10-20 लोगों के साथ ऐसे होटल में ठहरेंगे जहाँ एक दिन में कई हजार रुपए लिए जाते हैं। अरे गहरे ऐसे साधारण होटल में नहीं ठहर सकते, तो मद होता है। लेकिन दरिद्र सर्व मदई मुक्त, सब मदों से मुक्त होते हैं, तो पहले से ही कोई दोष नहीं है और उस पर से तपस्वी बन गया तो उसकी तपस्या बहुत अच्छी है, उसके लिए वही सबसे बड़ा तप है यदि स्वाभाविक दुख प्राप्त होता है। अच्छा, और यह देह जो है यदि पुष्ट रहे तो यही सब दोष का कारण हो जाता है। यदि देह अच्छा है, पुष्ट है और इंद्रियां बिल्कुल शक्तिशाली हैं, तो इंद्रियां विषयों की तरफ झोंकती और देह समर्थ है चलने में, खाने में, पीने में, भोगने में। लेकिन दरिद्र का क्या होता है, नित्यम छुच्छाम देहस्य, नित्य ही उसको भूख लगी रहती है और भूख एक आग की तरह है। जब भूख को कुछ खाने को नहीं दिया जाता है तो आंत को, देह को ही जलाना चालू करती, तो इसलिए शरीर छाम छीण हो जाता है। और नित्य ही जब आग लगी है तो शरीर तो छीण हो ही जाएगा, और जब शरीर छीण हो जाएगा तो इंद्रियां सूख जाएंगे, इंद्रियों का बल कम हो जाता है, जब इंद्रियों का बल कम हो जाता है तो विषयों में दौड़ना उनका बंद हो जाएगा। इस प्रकार की चिकित्सा हो रही है। आत्मा को कैसे कृष्ण भावना भावित रखा जाए ये उपाय बताया जा रहा है। नित्यम छुच्छाम देहस्य दरिद्रस्यान कांचिण इंद्रियान अनुसूचंती हिंसा पे विनिवर्तते। नित्य ही भूख लगी रहती है, खाने को पर्याप्त नहीं मिलता, एक पदार्थ भी पर्याप्त नहीं मिलता, रोटी भी भर पेट नहीं मिलती और सब्जी और तो छोड़ दीजिए। तो भूख लगने से शरीर छीण हो जाता है, और आकांक्षा कितनी होती है दरिद्र व्यक्ति की, महत्वाकांक्षा कितनी होती है, कितनी लालसा होती है, बस भोजन कांक्षा। एकादशी के दिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम इच्छा का उदय होता है, केवल इतनी ही इच्छा होती है कि कुछ मिलता खाने को, फलाहार चाहे कुछ। अगर वास्तव में भूख लगी रहे तो भूख के समय में और इच्छाएं अपने आप उखड़ जाती हैं, नहीं रहती। भोजन मिले, भोजन मिले, भोजन क्षुधितस्य जथे तरे, क्षुधित व्यक्ति को अन्य कामनाएं नहीं होती। तो भगवान की यह व्यवस्था देखिए, एक दरिद्र व्यक्ति केवल अन्न कांक्षी होता है, भोजन कांक्षी, और भोजन दे देने पर संतुष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति धनी है वो भोजन मात्र से संतुष्ट नहीं होता है, भोजन तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसको और चाहिए, ये कामना, वो कामना, ऐसी कामना, नाना प्रकार की कामनाएं रहती है। और दरिद्र को अन्न की कामना रहती है, अन्न की कांक्षा रहती है। इसका अर्थ यह है कि अन्य आकांक्षाएं उसकी नहीं रह पाती, भूख इतनी कड़ी लगी रहती है कि उस समय वो क्या सोचेगा कि हवाई जहाज से घूमना चाहिए, इधर सैर सपाटा करना चाहिए, पर खाने को मिले बस यही काफी, इसलिए अन्य कामनाएं तो उसकी निरस्त रहती। अन्य कामनाएं हृदय में न हो जिस साधक के, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कई प्रकार के साधनों से संभव नहीं है, केवल दरिद्रता से ही संभव है, सीधा उपाय। इसलिए भक्ति में भी विकास करने के लिए प्रायः उपवास किया जाता है। यह नियम रहा है वास्तव में, मनमाना नहीं खाना चाहिए, जब मन मांगे तब खा लो, कचड़ बचड़ जहां आता है बकरी की तरह खाते रहो। शरीर चलाने के लिए भोजन दिया जाता है, नहीं कि भोजन खाने के लिए खाया जाता है। जैसे कार में पेट्रोल भरते हैं तो पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल नहीं भरा जाता है, वास्तव में गाड़ी चलाने के लिए भरा जाता है। तो गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो जहां तहां खाना पीना। अभी घर से खा करके निकला और रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां मूंगफली खाने लगा, तो ये खाने लगा, वो खाने लगा, अंडा खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। बहुत बहुत मनुष्य इस समय बहुत खा रहे हैं और बहुत प्रकार की गंदी चीजें खा रहे हैं। खाना पीना, कोई पी रहा है पानी पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई धुआं पीने लगता है उसी में चालू करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन दरिद्र व्यक्ति इन सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस कारण से जब भूख लगी रहती है, शरीर क्षीण हो जाता है, तो इंद्रियाणि अनुसुष्यन्ति, अब इंद्रियां सूखने लगती। सूखने का अर्थ यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि पोलियो हो जाता है, चाहे लकवा मार देता है, ऐसा नहीं। सुष्यन्ति का अर्थ है कि उनका इंद्रियों में जो विषयों के प्रति वेग रहता है वो शिथिल हो जाता है। जो केवल अन्न की आकांक्षा रहेगी तो दूसरी क्या आकांक्षा होगी, नहीं हो सकती। तो इंद्रियाणि अनुसुष्यन्ति और हिंसा अति विनिवर्तते, शरीर स्वस्थ रहने पर, धन रहने पर जो दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति है, हिंसा देने की, हिंसा करने की, वो अभी विनिवर्तते चली जाती है। तो दुख नहीं दे पाता है, वचन से नहीं दे पाता है, शरीर से नहीं दे पाता है। तो इस कारण से जो नरक भोग होने वाला होता है वह भी उसका समाप्त हो जाता है, क्योंकि नरक में व्यक्ति हिंसा से ही जाता है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करने से, दूसरे के अधिकार को छीनने से, मारने से, दुख देने से ही व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसे ही संसार में वह खाए पिए किसी को दुख न दे तो उसे नरक में जाने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन दूसरों को दुख दिया है तो नरक तो अवश्य जाना है। चाहे हिंसा अपि विनिवर्तते का अर्थ यह है कि उससे हिंसा नहीं हो पाती है, किसी को दुख नहीं दे पाता है, इसीलिए दरिद्र व्यक्ति नरक भी नहीं जाएगा। तो हिरण्यकश्यपु का ठीक उल्टा विचार था। हिरण्यकश्यपु जब राजा हुआ ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके, भागवत में कथा है कि उसने नियम निकाला, रिसोल्यूशन पास किया कि जो व्यक्ति यहाँ तपस्वी है, गरीब है, निर्धन है, उसको नरक में भेजना चाहिए, क्योंकि वो पाप किया है तब तो गरीब है, और तपस्या कर रहा है, निर्धन है, समाज के लायक नहीं है, इन सबको नरक में भेजा जाएगा। और जो भोगी हैं, सुख से रह रहे हैं, स्वस्थ हैं, धनी हैं, उनको स्वर्ग भेजा जाएगा। उसने नियम बना दिया, उल्टा कर दिया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सारा उल्टा नियम बनाना उसका उद्देश्य भी था। वृक्षों को आज्ञा दिया कि सालों भर फल देना है, ऐसा नहीं कि एक महीने फल दे करके और चुपचाप बैठे रहो। पृथ्वी को आज्ञा दिया सालों भर फसल देना है। समुद्र को आज्ञा दिया तुम्हें रत्न 24 घंटे और सालों भर पैदा करना है। कभी कोई आराम नहीं, छुट्टी का दिन नहीं, संडे फंडे कुछ नहीं, निरंतर अब लागू कर दिया। लोग बिल्कुल दुखित हो गए, तब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान नरसिंह देव आकर उसको मारे और उसके सारे नियम बदले, अपने नियम लागू किए। तो कुछ लोगों की समाज में भी धारणा है कि जो लोग गरीब हैं वो बहुत पापी रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो नरक में वही लोग ज्यादा जाएंगे, कुछ लोगों की धारणा है, परंतु ये धारणा उचित नहीं है। वास्तव जितने भोगी लोग हैं, दूसरों को दुख दे करके भोग कर रहे हैं, उनके लिए तो नरक का रिजर्वेशन हो ही चुका है, वो तो जाएंगे। इस भागवत के अनुसार यदि दुख देकर दूसरों को जीते हैं तब, दुख नहीं दिए हैं तब नरक नहीं जाएंगे। तो हिंसा अपि विनिवर्तते, यह भी दरिद्रता के कारण बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यह सब तो है दरिद्रता का गुण है, लेकिन जीवन में जो सबसे बड़ा लाभ एक दरिद्र को होता है वह नारद जी अब बता रहे हैं कि दरिद्रस्य युज्यन्ते साधवो समदर्शिनः। दरिद्र के घर ही जाते हैं, दरिद्र से ही मिलते हैं भगवान के भक्त। साधव समदर्शिनः, जो समदर्शी हैं, जिनके जीवन में कोई लोभ नहीं है पैसे का, भोगों की आकांक्षा नहीं है, और जो धनी गरीब को बिल्कुल समान समझते हैं, वे साधु जन, भगवत भक्त जन दरिद्रस्य एव युज्यन्ते, दरिद्र के साथ ही मिलिता भवन्ति, उसी के साथ वो बैठते हैं, मिलते हैं, धनियों के पास नहीं जाते हैं। दरिद्रस्य एव युज्यन्ते, युज्यन्ते युक्त होते। ये कथा है कि चैतन्य महाप्रभु से महाराज प्रताप रुद्र से नहीं मिलना चाहते थे, और कई लोगों ने कहा कि आप मिलिए मिलिए, वो बहुत वैष्णव हैं, आपके चरण के अनुरागी हैं, आप नहीं दर्शन देंगे तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। भगवान सब जानते थे, चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि वे वास्तव में महान हैं, लेकिन वे कहते हैं चैतन्य चरितार्थ में ठीक है, वे कृष्ण के भक्त हैं, सब तरह से महान हैं, लेकिन उनका नाम राजा है इसलिए मुझे बहुत डर है। राजा शब्द से बहुत डरता है भाई, एक सन्यासी राजा से मिलेगा तो राजा उसको धन दे देगा, ये भोगी बन जाएगा, सन्यासी गिर जाएगा, इसलिए धनी आदमी से खतरा रहता है। तो जो वास्तविक भक्त हैं वे दरिद्र के पास ही जाते हैं, क्योंकि इनके जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसा पहले कहा गया मद नहीं रहता है, निरहंसतम रहता है, बैठता है, उसके पास काफी समय होता है कि वह साधु की बात सुने, और धनी व्यक्ति के पास जाइए तो कह देगा बैठिए हमारे रिसेप्शन रूम में, हमको समय नहीं है, हम तो काम पर जा रहे हैं, और किसी नौकर से कह देगा कि साधु का स्वागत कर देंगे, है ना, ऐसा देखा जाता है। या ज्यादा से ज्यादा आप कहे तो इसको किस लिए आया है, कुछ पैसे के लिए आया होगा, इसको दे दो बस, हमको समय नहीं। बहुत धनी लोग वास्तव में भजन नहीं करते हैं, यह सिद्धांत है बिल्कुल, उनसे त्याग संभव ही नहीं हो पाता। तो दरिद्रस्य एव, एव निर्धारण के लिए है कि वास्तव दरिद्र से ही मिलते हैं। कौन कौन? साधव समदर्शिन, साधव भगवत भक्ता, भगवान के भक्त साधु जन दरिद्र से ही मिलते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसे बातचीत करते हैं, गोष्ठी करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, और थोड़े से प्रयास से ही वह माला ले लेता है, भजन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हम लोग देखते हैं, हम लोग आते हैं मंदिरों में तो जो अपने को हीन मानते हैं, गरीब मानते हैं, वो फूड फॉर लाइफ में बैठ करके खा लेते प्रसाद, लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं बैठ सकते, तो वहां बैठ जाएंगे तो हमारी हीनता हो, एक मन में मान्यता है वास्तव में। जो भी हो, नारद जी सिद्धांत बता रहे हैं, दरिद्रस्य युज्यन्ते साधव समदर्शिनः, दरिद्र से ही मिलते हैं साधु समदर्शी। अब तो जमाना बिल्कुल उल्टा हो गया, अब तो धनी से ही मिलते हैं साधु। बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है वास्तव में इस जगत में सब कुछ। देखिए श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण है, तो कह रहे हैं साधु जन गरीब से ही मिलते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी दरिद्र को साधु संग मिलता है तो वह एक बहुत ही उर्वर भूमि है, उर्वर भूमि है जहां बहुत जल्दी भक्ति का बीज डाला जा सकता है, कि अन्य गर्व से वो रहित है, दोषों से रहित है, उसके साथ थोड़ी बातचीत करने पर, थोड़ा सिखाने पर वो भगवान का भक्त हो जाता है। जप करता है, भगवान का नाम बोलता है, तो सद्भी क्षमति तम तरसम तत्व आराध विशुद्धति। एक प्रश्न उठता है कि आखिर गरीब है तो उसको तो विषय की तृष्णा तो रहती ही है कि मुझे मिले। तो नारद जी कहते हैं हाँ तृष्णा रहती है, लेकिन साधु के संग से सद भी उसकी वो तृष्णा भी चली जाती है। जब साधु का संग होता है और वह निर्धन व्यक्ति दरिद्र व्यक्ति भगवत कथा सुनता है, भगवान की भक्ति करता है, तो साधु के संग से साधु को जो सुख मिल रहा है उस सुख को पा करके उसकी सांसारिक तृष्णा भी चली जाती है, ये लाभ होता है। और धनी व्यक्ति की तृष्णा को हटाना कठिन है, तृष्णा हटाई नहीं जा सकती है उसकी। और गरीब की तो तृष्णा है लेकिन निराधार रहती है, इसलिए साधु के संग से तृष्णा चली जाती है और आराध विशुद्ध जाती, वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है, सब तरह से शुद्ध हो जाता है। विशुद्धति का अर्थ है कि उसका मन भगवान कृष्ण को पकड़ लेता है, भगवान में उसका मन लग जाता है। ये सब पृष्ठभूमियां हैं, आधार हैं, किस स्थिति में कोई व्यक्ति भगवान को ग्रहण कर लेता है। बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। वास्तव में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में इस प्रसंग में एक जगह लिखते हैं कि जैसे कोई बच्चा सो गया है तो खाने के लिए जगता नहीं है, लेकिन उसकी माँ या उसके पिताजी उसको जगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं जगता है या दवाई नहीं लेना चाहता है, सो गया है, दवाई लेने का टाइम है, तो माता पिता उसके कान पकड़ते हैं या हाथ को दबाते हैं नख से, इसे वो जग जाए। जग जाता है तब इसके बाद वो भोजन देते हैं, भोजन का रस मिल जाता है तो खाने लगता है। तो इसी प्रकार दरिद्रता भगवान देते हैं किसी को, तो वास्तव में भगवान की यह कृपा है, लेकिन उन पर कृपा मानी जाएगी जिनको दरिद्र होने पर साधु संग मिल जाता है। साधु संग मिलना यही भगवान की कृपा है, जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको साधु संग मिलता है। राम कृपा बिन मिलहिं न संता, भगवान की कृपा से संत का दर्शन होता है। तो संतों का साधुओं का यह स्वभाव होता है कि वे गरीब से प्रेम करते हैं और साधुओं के संग से उसकी विषय भोग की तृष्णा चली जाती है। तृष्णा जाने के बाद वो तत्काल शुद्ध हो जाता है, भगवान में उसकी मति लग जाती है। तत्व इसलिए अहम मैं मत्तयो और माध्या वारुण्या श्री मदान्धयो हो तमो मदम हरिश्यामी स्त्रणयो रजतात्मनो, इसलिए मैं इन दोनों का चिकित्सक बनूंगा, मैं इनका तमो मद हरूंगा। क्रोध तनिक भी नहीं है, जैसे अपने दो पुत्रों के प्रति पिता दयालु हो, उस तरह से श्री नारद मुनि यह सिद्धांत कह करके अब नलकुबर और मणिग्रीव के विषय में कह रहे हैं कि तदहम मत्तयोर माध्या वारुण या श्री मदान्धयो तमो मदम हरिष्यामी, मैं इनका तमह मदम हरिष्यामी, अज्ञान के कारण जो मद हो गया है इसको मैं हरूंगा, दूर करूंगा। जैसे कोई महाकृपालु वैद्य किसी महारोग से ग्रस्त रोगी के प्रति कृपा करके कहे कि मैं इसका रोग दूर करूंगा, उस तरह से श्री नारद जी उन दोनों का रोग दूर करना चाहते हैं। अज्ञान के कारण जो मद हो गया है, संसार के भोगों की आसक्ति, उसको वे हरना चाहते हैं। यहाँ पर श्री नारद जी की महिमा हम लोगों को समझनी चाहिए, वे समर्थ हैं भगवान के समान, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अहम तमो मदम हरिष्यामी, मैं हरण करूंगा। वारुणी मदिरा पी करके इस समय मत्त हैं, लेकिन एक दिन भगवत प्रेम पिला करके इनको मत बनाऊंगा, भगवान के प्रेम में मतवाले बनेंगे, ये भाव है। आज वारुणी मदिरा पी करके मत्त हैं और श्री मद से अंधे हैं, लेकिन ये देखेंगे। आज अंधे हैं, अपना कर्तव्य नहीं देख रहे हैं, संसार की बातों को देख रहे हैं, लेकिन एक दिन फेस टू फेस कृष्ण को देखेंगे। नारद जी ने पहले ही ऐसा विचार कर लिया कि इनको ऐसी स्थिति में डालना है जिससे ये भगवान का दर्शन कर सके, यह करुणा है। तो अहम शब्द लगा रहे नारद जी, अहम तमो मदम हरिष्यामी, मैं इनका तमो मद दूर करूंगा। प्रायः अहम शब्द ये शब्द साधुओं के द्वारा प्रयुक्त नहीं होता है, किसी विषय में बड़े नम्र भाव से बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं ये करूंगा या मैं किया हूं मैं। लेकिन नारद जी कुछ विशेष बात सोचकर कह रहे हैं कि हमने इस भाव है कि यदि हमने भगवान की भक्ति किया है तो भगवान की भक्ति के बल से मैं इनको शुद्ध करूंगा, ये कहने का भाव है। और हम शब्द का यहाँ तात्पर्य नारद जी की भगवान के प्रति जो शरणागति है, भक्ति है, वही अहम शब्द से व्यक्त हो रही है। अहम का और अर्थ क्या होगा? क्या मैं ब्रह्मा जी का पुत्र इनकी चिकित्सा करूंगा? नहीं, मैं भगवान की भक्ति किया हूं और भगवान के भक्ति के बल से मैं इनको शुद्ध कर दूंगा, यह अर्थ है। इसलिए यह अहम कोई निंदित शब्द नहीं है। यहाँ मैं तमो मदम हरिष्यामी स्त्रैणेव रजितात्मनो, ये आज स्त्री के बस में है और अजितात्मा है, इंद्रियों के अधीन है, तो मैं इनका अज्ञान से उत्पन्न मद हरूंगा। यद्यपि ये लोकपाल के पुत्र हैं, श्री कुबेर जी के पुत्र हैं, जदिमऊ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ, वंश की दृष्टि से बड़े बड़े महान हैं, कुबेर जी के पुत्र हैं, लेकिन आज तमः प्लुतौ, तम से अज्ञान से घिर गए। प्रत्येक व्यक्ति की वास्तव में वही दशा है जो नलकूबर और मणिग्रीव की है। जो अध्यात्म में अग्रसर पुरुष हैं, उनका एक कर्तव्य है कि वे अज्ञान मद हरे। हरण का उपाय है वास्तव में भगवान की कथा, भगवान का प्रचार। तो नारद जी कह रहे हैं कि तमह प्लुतौ हो गए। प्लुता का अर्थ है डूब जाना, अज्ञान में पूरा पूरा डूब गए। शरीर अविद्या जाल, शरीर ऐसे ही अविद्या जाल है, अज्ञान है, अज्ञान से बना है, तो अज्ञान में गिर गए हैं, संसार के भोगों को भोगने में ही अपने जीवन की सफलता समझ रहे हैं। इतना तक अज्ञानी हो गए हैं, इतना अज्ञानी हो गए हैं कि न विवाससम आत्मानं बीजानी तो सुदूर मतलब, इतना मद बढ़ गया है, इतना अज्ञान बढ़ गया है कि इन्हें यह भी पता नहीं है कि हम नग्न हैं। न विवाससम, विवाससम मतलब विगत वाससम, ये भी इनको पता नहीं है, अथवा ये इनको पता नहीं है कि हम नग्न स्नान कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। तो इतना मद बढ़ गया है, इतना अज्ञान बढ़ गया है। विषय भोग व्यक्ति कर सकता है, यह छूट है शास्त्र में, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसके कुछ नियम। यह थोड़े विषय भोग का नियम है कि जहां तहां नंग धड़ंग नहाने लगे, घूमने लगे, तो ये तो सीमा पार कर गई न मद की। तो नारद जी कह रहे हैं एक प्रकार से कि इनका रोग तो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तमो मद हरूंगा। ये अपने को नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे पिता कुबेर जी हैं और हम इतने बड़े हैं, हमको इतना नीच आचरण नहीं करना चाहिए, इस तरह भोगों में आविष्ट नहीं होना चाहिए, साधारण मनुष्यों को भी इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो देवता होकर के इतना गिरे हुए, बहुत ज्यादा पतन। अब व्यवस्था कर रहे हैं, इनकी चिकित्सा कैसे कर रहे हैं, कहते हैं, अब उनको सुनाकर कहते हैं, अतो अरहत स्थावरताम स्याताम नैव यथा पुनः। अब ये दोनों स्थावरता के योग्य हैं, वृक्ष शरीर में जाने योग्य है, स्थावरता, स्थावर वृक्ष को कहते हैं। बेचारे वृक्ष एक जगह रहते हैं और जीवन भर कहीं नहीं जाते, घूमते नहीं, अचर, जहां जन्म मिलता है वहीं रह जाते हैं, मतलब जन्म के बाद फिर उखाड़ कर कहीं रोप दिया जाता है तो वहीं जीवन भर रह जाते हैं, और कहीं जाते हैं तो मर करके, मतलब उनके शरीर को काट कर लकड़ी को इधर उधर किया जाता है, वृक्ष नहीं जाते, इसलिए उनको स्थावर कहा जाता है। वही देवता जो विमान पर घूम रहे थे या स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, देवता इतने महान, लेकिन उनको कह रहे हैं अब यह स्थावर जोनि के यज्ञ। क्या पावर है नारद जी का, वे चाहे तो किसी को वृक्ष शरीर में डाल सकते हैं। देखिए शक्ति। इसीलिए प्राचीन आचार्यों के, महान पुरुषों के वाणी को हमें लेना चाहिए अपने आदर्श के रूप में, उनके आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए। नारद जी तो कह दिए कि ये वृक्ष हो जाए और हो गए, और आज आदमी को छोड़ दीजिए, किसी कुत्ता को भी, कीट को भी आप कह दीजिए कि वृक्ष हो जाओ, हो जाएगा? नहीं हो सकता। वृक्ष होने के बाद छोड़ दिए, एक मच्छर से कहिए कि हमको मत डंक मारो, हमको मत काटो, नहीं मानेगा। इतनी शक्ति नहीं। पहले के लोग इतने समर्थ थे, इसीलिए इनको भगवान कहा गया है, देवर्षि, कई बार शब्द आते हैं। अतः यह स्थावर जोनि के योग्य हैं, जिससे न एवं जथा पुनः, जिसे फिर ऐसा न हो पाए, ऐसा विषय का आवेश इनको फिर न हो पाए। और वासुदेवस्य मत प्रसादेन मदनुग्रहात् स्मृति स्यात्। लेकिन वृक्ष शरीर में भी भगवान की कृपा से इनमें भगवत स्मृति रहेगी। ये जो साप नहीं है, बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, वृक्ष शरीर दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से इनमें भगवत स्मृति रहेगी, स्मृति से युक्त जीवन रहेगा। शब्द की रचना ऐसे है, यहाँ श्लोक की रचना की लगता है कि नारद जी करेंगे, मत प्रसाद देना, मद अनुग्रहत, मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से इनको भगवत स्मृति रहेगी। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है, वासुदेवस्य मत प्रसादेन मत अनुग्रहात्। भगवान श्री कृष्ण की जो मुझ पर कृपा है और उनका जो प्रसाद है, उसके बल से इनको भगवत स्मृति रहेगी। वृक्ष योनि में कृष्ण की पूरी स्मृति इनको रहेगी, और वह भी जन्म कहाँ देने जा रहे हैं, ब्रजमंडल में, महावन में, गोकुल में जन्म दे रहे हैं। यह नारद जी की अद्भुत कृपा है। और शास्त्र कहता है कि भगवान की इच्छा या भगवान की कृपा साधु के कृपा की अनुगामनी होती है। इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति इनको हो। एक भक्त ने विचार किया है कि ये बेचारे सब तरह से तो पाप किए थे उस पूर्ण तीर्थ में, कैलाश में, गंगा जी में, नारद जी का एक प्रकार से अपमान हुआ था, नग्न थे, फिर भी क्या बात थी कि इन्हें ब्रज में जन्म मिला, नारद जी की कृपा प्राप्त हुई, कि कोई तो सुकृत रहा होगा, कुछ तो सुकृत रहा होगा। तो इस पर वे कहते हैं, हरीश्वर जी कहते हैं कि नलकुबर और मणिग्रीव में इस प्रकार का पाप था, विषय का आवेश था, उन्होंने कोई शुभ कर्म किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं तो एक देख रहा हूँ प्रकट शुभ कर्म कि वे गंगा जी के पानी में क्रीड़ा कर रहे थे, शायद गंगा जी के प्रभाव से ही उन्हें यह अवसर मिला। कुछ भी था, भगवान के चरण जल में वे क्रीड़ा कर रहे थे, गंगा जल क्रीड़नम, यानी गंगा जी की बहुत महिमा है। वे बेचारे गंगा जी की महिमा नहीं जानते थे, विषय में आविष्ट थे, लेकिन गंगा जी तो अपनी महिमा जानती है ना, तो गंगा जी में क्रीड़ा करने के कारण उनको एक अवसर मिला। ये उत्प्रेक्षा करते हैं, स्थावर जोनी, उसमें कृष्ण का स्मरण और ब्रज में जन्म, यह सब नारद जी की कृपा से हुआ। अथवा उसका डायरेक्ट अर्थ भी कर सकते हैं, मत प्रसाद है ना मद अनुग्रहात्। दोनों शब्द देने का अर्थ यह है कि मैं इनके पूर्ण अनुकूल हूँ, मेरी इच्छा है कि ये भगवान के भक्त बने, भगवान का कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान के परिकर बने, यह नारद जी की इच्छा है। इसी को जद्रिच्छा शब्द कहा गया है शास्त्रों में। बिना साधन के, बिना किसी शुभ कर्म के, किसी पर भी साधु की कृपा हो सकती है। ऐसे ही लोगों को कृपा सिद्ध कहा जाता है। साधन इन लोगों ने नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन नारद जी की कृपा हो गई। भगवान इस तरह कृपा नहीं करते हैं, भगवान साधन की अपेक्षा करते हैं। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान साधन देखते हैं, साधन किया है तो वे गति देते हैं। हाँ, भगवान कब किसी की शुभ गति देते हैं बिना साधन के भी? जब वह डायरेक्ट टच में भगवान के आता है तब, जैसे पूतना। पूतना डायरेक्ट भगवान के संपर्क में आई, भगवान को दूध पिलाई चाहे विष पिलाई जो भी पिलाई, तब भगवान उसे माता की गति दिए। परंतु साधु की इच्छा, साधु की कृपा बिना संसर्ग के ही हो सकती है, कहीं भी। साधु की कृपा भगवत कृपा से अधिक बलवती है, और भगवान की कृपा पीछे पीछे चलती है साधु। किसी महान साधु के मन में यह इच्छा हो जाए कि यह व्यक्ति भक्त बने, भगवान में इसकी मति लगे, तो उसकी मति लग जाती है, भगवान कृपा करके उसको ऐसी मति देते हैं। तो यहाँ पर यह हम लोग इतिहास सुन रहे हैं कि दो देवता किस प्रकार नारद जी की कृपा प्राप्त किए और उन्हें ब्रजमंडल में जन्म मिल रहा है, स्थावर शरीर में भी पूर्ण कृष्ण स्मृति से युक्त जन्म लेंगे। जिस समय वृक्ष बने थे उस समय उनको पूरा पूरा स्मरण था कि आगे चल करके इस ब्रज में भगवान का अवतार होगा, भगवान हमारी छाया में खेलेंगे, हमको छुएंगे, ये सब उनको स्मरण था। बहुत काल तक वे खड़े रहे इस ब्रज में भगवान की प्रतीक्षा में, दिव्य शरद छते, दिव्य 100 वर्षों तक खड़े रहे भगवान की प्रतीक्षा में, स्मरण से जुगते तपस्या एक प्रकार की कर रहे थे वही ब्रज भूमि में। तो वासुदेवस्य सानिध्यम लब्धवा दिव्य शरद छते वृत स्वरलोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। ये दोनों वासुदेव का सानिध्य प्राप्त करेंगे, भगवान कृष्ण का सानिध्य मतलब उनका नैकट्य प्राप्त करेंगे। कैसा नैकट्य? निकटता, कई वर्ष की निकटता प्राप्त करेंगे। उखल बंधन के समय भगवान कितने वर्ष के थे? 3 वर्ष। तो उतने वर्षों तक संग मिला भगवान का, ये सानिध्य कहते। भगवान जिस व्यक्ति के पास खेल रहे हों, सट रहे हों बार बार, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। ये सब नारद जी की कृपा का फल। नारद जी ने भगवत संग दिया, वासुदेवस्य सानिध्यम, और इसके बाद उखल बंधन के दिन भगवान ने उखल से दोनों को उखाड़ दिया, उनका उद्धार किया। तो लास्ट संग था, लेकिन इसके पहले रात दिन संग मिलता था उनका। तो वासुदेवस्य सानिध्यम लब्धवा, इसके बाद स्वर्गलोकताम हुए, इसके बाद स्वर्ग लोक जाएंगे, जहाँ के निवासी हैं वहाँ जाएंगे, अलकापुरी में जाएंगे। इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बड़ी नगरियां हैं, सिटीज हैं, तो उसमें सबसे सुंदर नगर तो अमरावती है, जो इंद्र की राजधानी है, स्वर्ग देवता के राजा इंद्र रहते हैं। लेकिन लगभग उसी प्रकार की अलकापुरी है, भोगवती है, नागों की नगरी, वरुण देव की नगरी है, उसको विभावरी कहते हैं। बहुत से नाम हैं और बहुत सुंदर नगर हैं। वैसे नगर इस पृथ्वी पर नहीं है, कभी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। हमारे जी कहते हैं कि इतना दिन वृक्ष रह करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके और लब्ध भक्ति, भक्ति प्राप्त करके, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करके, तब ये आएंगे स्वर्ग और वहां रहेंगे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर अपने घर जाएंगे, और जिस समय स्वर्ग गए होंगे ये नलकुबर और मणिग्रीव, उस समय जब ये अपनी कथा सुनाते होंगे और कृष्ण की, कि भगवान किस तरह हमारा उद्धार किए, किस तरह आंगन में खेलते हैं, तो उनकी कथा कुछ और ही होती होगी स्वर्ग में। भगवान ने इसीलिए उनको भेजा स्वर्ग कि जाओ वहां वृक्ष जोनि से उद्धार करके। तो नारद जिस प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं उक्त्वा स देवर्षि गतो नारायण आश्रमम नलकूबर मणि ग्रीवा वासतुर जमलार्जुन। नारद जी इतना कहकर साप दे करके भगवान नारायण के आश्रम में चले गए। नर नारायण मतलब बद्रिकाश्रम चले गए जहाँ भगवान नर नारायण रहते हैं। भगवान नारायण के आश्रम में चले गए, नर नारायण मतलब बद्रिकाश्रम चले गए जहाँ भगवान नर नारायण रहते हैं। यही नारद जी के उपास्य है। वे वहाँ चले गए और ये दोनों भाई वृक्ष बनकर ब्रज में जन्म लिए। जमलार्जुन हो गए, जमल अर्जुन जुड़वा संतान अर्जुन दोनों एक समान शाखा प्रसारित किए थे, एक जैसे बिल्कुल लगते थे, ऊंचाई चौड़ाई सब कुछ ये जमल थे, जुगल ट्वीन एक साथ। उनको यमल अर्जुन, जमल का अर्थ जोड़ा, जमल अर्जुन, अर्जुन वृक्ष का नाम। तो भगवान ने इनको देखा, इनके उद्धार की चिंता की। नारद जी नारायण आश्रम चले गए साप दे करके। क्यों? इस पर हरिश्वर जी कहते हैं कि नारद जी तपोधन है, तपस्या की शक्ति होती है। उन्होंने विचार किया कि साप देने में कुछ तप खर्च हो गया, तो फिर से चलू बद्रिकाश्रम और तपस्या पूरी कर लू। अथवा इन्होंने सोचा कि मैं तो दो देवताओं को वृक्ष बना दिया, और कुछ भी था तो एक हत्या जैसी थी ना, कुछ भी अनुग्रह किए लेकिन शरीर तो बदला। तो नारद जी के मन में एक बात की आशंका हो रही थी कि मेरा कार्य उचित है या नहीं। भगवान नारायण अपने आप मुख से कुछ कहेंगे, कुछ कमेंट देंगे, इसको सुनने के लिए चलेंगे। वहां चर्चा तो होगी ही कि वो कुबेर के दोनों लड़के खत्म हो गए, मतलब उनको मार दिया गया। सांप देकर के वृक्ष बनाने का मतलब देव शरीर तो गया। तो यह बहुत बड़ी घटना थी स्वर्ग में, सामान्य घटना नहीं थी, उसकी चर्चा तो सब जगह होगी ही। और नारद जी अपने प्रभु नारायण के पास गए कि अगर वे इसको ठीक कर देंगे तो ठीक, कोई बात नहीं। तो इनको चिंता हो रही थी ठीक किया हूं नहीं किया हूं। ये भक्ति रसायन में हरिश्वर जी भाव देते हैं, इसीलिए वे सबसे पहले नारायण आश्रम में गए कि हमने जो दो लोगों का क्या कहे वध किया है, चाहे ये किया वो सही है कि नहीं है कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, इस तरह की घटना हो जाने पर वो जरूर चाहेगा कि हमसे बड़े हमारे प्रभु के द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए कि ठीक किए। तो भगवान नारायण के पास तो सब ऋषि मुनि जुटे रहते हैं, भगवान शंकर भी जाते हैं, सनकादिक आते हैं। तो नारद जी वहां गए, चर्चा चली होगी और भगवान ने कहा बहुत कृपा किए नारद जी, बहुत कृपालु हैं। तब इनका मन बिल्कुल ठीक हुआ है। यही सोचकर नारद जी नारायण आश्रम गए, बद्रिकाश्रम गए, बद्रिकाश्रम को ही नारायण आश्रम कहा। और ये दोनों जमलार्जुन वृक्ष बने। और भगवान ने विचार किया ऋषेर भागवत मुखस्य सत्यम कर्तुम बचो हरि जगाम संकश तत्र जत्रास्ताम जमलार्जुन। माँ जशोदा ने आंगन में बांधा था, आंगन के भी कई विभाग थे और जो दोनों वृक्ष थे वे भी एक बाहरी आंगन में थे। तो भगवान ने विचार किया कि नारद जी हमारे प्रिय हैं, ये आगे बात आएगी किस तरह भगवान ने सोचा। नारद मेरे परम प्रिय अंग हैं, भक्त हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरी कृपा प्राप्त इनको होगी, तो मैं तो इनको सानिध्य दिया लेकिन वृक्ष जोनि से निकाल करके इनको अब स्वर्ग भेजना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि 100 शरद बीतने पर, मतलब दिव्य 100 वर्ष बीतने पर वासुदेव का संग होगा और इसके बाद स्वर्ग जाएंगे, नारद जी ने कहा। तो भगवान ने विचार किया कि नारद जी ने जो कह दिया उसको पूरा करना चाहिए। देखिए भगवान की चित्तवृत्ति, भगवान नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करने को सोचे तो पहले उन्होंने सोच लिया कि नारद जी ने जो कहा है वही करना है, कि अपना प्रिय व्यक्ति जो कह दिया तो करना है। भगवान के भक्तों को भगवान पर इस तरह से भरोसा रहता है, हम जो कहे हैं भगवान पूरा कर देंगे। वास्तव में अनन्य भक्त हो तो इस तरह से गर्व रहता है भगवान पर कि हम जो कहेंगे भगवान कर देंगे। एक बार की घटना मैं सुना रहा हूँ आपको, गोरखपुर में मैं सुना था। एक मारवाड़ी थे धनी, उनकी पत्नी गई एक बार कपड़ा खरीदने के लिए एक दुकान में, तो दुकानदार से उसने मांगा कपड़ा दिखाने के लिए कहा, तो दुकानदार दिखा रहा था, फैला रहा था कपड़ा, तो कहने लग वो कहती थी कि मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। तब तक दुकानदार ये कह दिया कि तुमको लेना है केवल देखना है, और वो बहुत बड़े धनी घर की स्त्री थी। उसके मन में दुख लग गया और उसने कहा कि तुम्हारे दुकान में कितना कपड़ा है और तुम्हारे पूरे दुकान की क्या कीमत है, बताओ आज मैं खरीदना चाहूँ। बेचारा समझा कि ऐसे बोल रही है, लेकिन वास्तव में वो तैयार हो गई। तो उसने कहा कि मैं दुकान तो नहीं बेच सकता हूँ लेकिन कपड़ा सब बता रहा। तो उसने अपने पति को खबर दिया, इस दुकान में जितना कपड़ा है खरीदना है, तो आकर पति सब खरीद ली। तो उस पत्नी को कितना भरोसा है, कितना विश्वास है अपने पति पर कि मैं मेरी रुचि का पालन करेंगे। यद्यपि उसने आक्रोश में वो बात कहा था, जिद में आकर के वो बात कही थी, लेकिन फिर भी पति ने उसकी रुचि का पालन किया। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों की कही हुई बात को पूरा करते हैं। यदि अनन्य भक्त हो और कह दे कि ये होना चाहिए तो होगा, भगवान करेंगे। यहाँ वे नलकुवर और मणिग्रह के उद्धार की बात सोच रहे हैं तो यही याद आ रहा है कि नारद जी ने कहा देवर्षि में प्रियतम, आगे भगवान सोच रहे हैं देवर्षि मेरे प्रियतम। प्रियतम शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा प्रिय। भगवान जिस शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसे बिना सोचे समझे नहीं कर देते। देवर्षि में प्रियतम, सबसे प्रिय व्यक्ति हमारे देवर्षि। एक बार श्रील प्रभुपाद जी कुछ क्लास दे रहे थे तो उन्होंने कह दिया प्रहलाद महाराज भगवान के भक्तों में दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट। और इसके बाद एक बार वो बोल रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज को वो कह दिए कि वे भगवान कृष्ण के भक्तों में दी बेस्ट। तो इस तरह से कई बार कहे तो भक्तजन पूछे कि आप कभी प्रहलाद महाराज को बेस्ट कहते हैं, कभी युधिष्ठिर महाराज को बेस्ट कहते हैं, कभी नारद जी को कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहे कि हाँ प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने पूछा कि और युधिष्ठिर महाराज, ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उन्होंने कहा। और फिर गोपीजन, ओह दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बेस्ट से कम किसी को नहीं कहते थे प्रभुपाद जी, तो सब बेस्ट दी बेस्ट। तो भगवान यहाँ सोच रहे देवर्षि में प्रियतम, देवर्षि मेरे प्रियतम। प्रियतम का अर्थ अतिशय प्रिय, सीमा पार प्रिय, सबसे प्रिय। तो इनके बहुत से सबसे प्रिय हैं अधिक। जब उद्धव जी से भगवान बातचीत करते हैं तो कहते हैं उद्धव तुम मुझे जितने प्रिय हो, मेरे पुत्र ब्रह्मा भी मुझे उतने प्रिय नहीं, मेरे स्वरूप शिव जी भी मुझे उतने प्रिय नहीं, मेरे साक्षात भाई शंकरषण भी मुझे प्रिय नहीं, और तो और मेरी अर्धांगिनी श्री भी मुझे उतने प्रिय नहीं जितना तुम जैसे भक्त मुझे प्रिय, ऐसा कह। तो भगवान इस तरह से भक्ति के प्रभाव को मानते हैं, कहते हैं देवर्षि मेरे प्रियतम है, देवर्षि में प्रियतम जदिमो धनदात्म जो। और उस पर भी ये बेचारे धनद के आत्मज बहुत महान पुरुष के लड़के, कुबेर जी मेरे भक्त हैं, अगर मेरे भक्त के लड़के इस तरह से पतित हो गए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि इनका उद्धार करें। ये उद्धार तो उनका 100 वर्ष पहले ही हो चुका है, ब्रज में जन्म मिलने का मतलब उद्धार हो चुका है, लेकिन फिर भी लोक भी कहे कि उद्धार हो गया, भगवान ये सोच रहे। लोग तो तभी कहेगा जब दोनों अपने स्वरूप में हो जाएं, भगवान को देखें, बातचीत करें, तब कहेंगे कि हाँ उद्धार हो गए। तब तथा साधयिष्यामि जद गीतम तन महात्मना, उस महात्मा के द्वारा, देवर्षि नारद जी के द्वारा जो कहा गया है, जैसे कहा गया है तब तथा साधयिष्यामि, उसको उसी तरह से पूरा करूंगा। ये सोच करके भगवान गए और उखल को घसीटना चालू किए। पहले शुरू से वो देख लिए कि माँ काम में व्यग्र है, मुझे रोकेगी नहीं। तो उसी बाल लीला पूर्वक ही, बाल लीला के ही आवेश में, घुटना से चलते हुए, हाथ से बकरियां चलते हुए और उखल को खींचते, खड़ा खड़ा खींचकर नहीं ले गए। वो खड़ा भी खींच सकते थे, चल सकते थे, वैसे नहीं गए, बकरियां चलते हुए गए, बाहुबल से और घुटने से चल रहे थे धीरे धीरे। और ऐसे चल रहे थे कि उखल के जमीन से टकराने की आवाज न पड़ जाए माँ को, नहीं तो आएगी तो कहेगी ये क्या कर रहे हो। फिर टाइट कर देगी, चाहे उखल को ही कहीं फिर खंभे से बांध देगी। पहले तो उखल को घसीटने देख करके ही वो आश्चर्य में पड़ जाती, ये क्या हो रहा है, तो दूसरे जगह बांध सकती थी। इसीलिए बहुत धीरे धीरे खींच रहे थे, बहुत कलात्मक ढंग से खींच रहे थे कि आवाज न निकले, वो देख न ले। और वृक्षों के बीच में जाना था, दोनों वृक्ष लगभग सटे हुए थे, थोड़ी सी जगह थी, उसमें से श्री कृष्ण गए, वो तो पार हो गए। छोटा सा बच्चा थे, कई बार पार किए थे, सैकड़ों बार उसे वो पार किए थे बिना उखल के पहले खेलने में, लेकिन आज वो पार किए। वो तो चले गए लेकिन उखल तिरछा चल रहा था, वो अटक गया। तो भगवान ने कोई बहुत जोर नहीं लगाया, भाई विराट रूप प्रकट करके या जोर लगाकर जैसे तैसे करें। वे चले, उखल अटका, रस्सी सीधी हुई, और फिर भी वो थोड़ा सा चले तब तक दोनों वृक्ष की जड़ें उखड़ गई, चढ़ 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 करके और धड़ाम से वे गिरे। बहुत बढ़िया बड़ी ध्वनि हुई, विस्फोट जैसा हुआ, लगा कि वज्रपात हो गया, दोनों वृक्ष गिरे। अब जो लोग काम कर रहे थे खेत में, कहीं गाय चरा रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, वे सब दौड़े कि ब्रज में क्या हो गया, क्या उत्पात हो गया, और माँ यशोदा दौड़ी ये क्या हो गया, छत गिर गया कि क्या हुआ, मेरा बच्चा यहाँ पर है। और सब लोग दौड़े, व्याकुल हो गए। पहले से भी ऐसी आपत्ति आती रहती थी, मतलब कोई राक्षस आया होगा ये विचार कर रहे थे, कोई राक्षस आया, दूर से ही देख रहे थे कि दोनों अर्जुन के वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे, बहुत ऊंचे थे, तो दूर से देखने लगे, लगे खाने अरे तो वृक्ष कोई गिरा दिया राक्षस आकर के। आज पहले त्रिणावर्त आया था, सकटासुर आया था, जो खड़ा गाड़ी को उलाट दिया। कोई ऐसी घटना थोड़े हो सकती है, ट्रक खड़ा है और खड़ा पार्किंग में ही उलट जाए, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन वो लोग मानते थे कि त्रिणावर्त ने उलाटा था, उल्टा किया था, जबकि किया था वास्तव में कृष्ण ने, अपने छोटे छोटे पैर से सकट को मारकर विपर्जय कर दिया, उल्टा कर दिया। कोई नहीं माना कि इसने उल्टा किया था, बच्चे कह रहे थे कि इसने जब पैर से मारा तब वो छकड़ा उल्टा, तो वो लोग डांटने लगे चुप रहो, इस तरह से व्यास बोला। हरिश्वर जी कहते हैं कि वो कृष्ण तत्ववेत्ता थे, बच्चे जानते थे कृष्ण ने किया, लेकिन फिर भी उनको लोग कहते हैं तुम लोग बेवकूफ हो, ऐसा किए बच्चा कैसे कर सकता है, वही लोड गाड़ी को ये बच्चा कैसे उलट सकता है। तो घटनाएं हुई थी और उस समय भी बहुत भयावह आवाज हुई थी, त्रिणावर्त जब गिरा था बहुत जोर से बोला भी था, तो उस समय भी बहुत आवाज हुई थी। तो इतना तो अनुमान कर लियो सब लोग कि कोई राक्षस आया है, वृक्ष गिरा दिया, ये क्या हो क्या, सब दौड़े हाय हाय करते हुए। और वो भी यशोदा के आंगन में घटना हुई, अब क्या होगा, हे भगवान हे नारायण, यह कहते हुए सब लोग दौड़े। इसके पहले सुखदेव गोस्वामी उस कथा को पूरा कर रहे हैं, जो कि वृक्षों के उखड़ने से दोनों से दो दिव्य पुरुष जन्म लिए, प्रकट हुए, सूरज के समान तेज था उनका, नारद जी का पूर्ण अनुग्रह प्राप्त था, ब्रज में जन्म हुआ था, वो पहले से अधिक सुंदर लग रहे थे, अब तो बिल्कुल शुद्ध हो गए थे, उस समय तो विषयी थे जब देवता थे, अब तो बिल्कुल पूर्ण शुद्ध हो गए। और बंधे हुए बालक को प्रणाम कर करके स्तुति करने लगे। और वहाँ माँ यशोदा ने जिन बच्चों को नियुक्त किया था वे सब आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे कि दो देवता इस बच्चे की प्रार्थना कर रहे हैं, कोई चरण छू रहा है, कोई ब्रजरज लेकर के लगा रहा था। तो मलकुबर और मणिग्री में दोनों में वो ब्रजरज लगा रहे थे, चरण छू रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। तो बच्चे तो संस्कृत समझ नहीं रहे थे उनकी बात को लेकिन ये जान रहे थे कि ये स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो वो कोई बहुत आश्चर्य में नहीं पड़े और न वृक्षों के गिरने से उनको कोई भय हुआ है। वो तो लीला देखने में आविष्ट थे। जब गोपों की गोष्ठी बैठेगी बाद में कि भाई वृक्ष क्यों गिरे तो पता लगाया जाएगा यहाँ था कौन, उससे पूछो। तो माँ यशोदा ने बताया कि ये बच्चा था। तो उन लोगों से पूछा गया कैसे गिरा, कुछ देखा, कोई आया बहुत हास बांध करके, कोई राक्षस आया, कोई दैत्य आया, कोई देखा विकराल रूप, कोई कुछ देखा, अनुभव किया। तो बच्चे कहे कि हम तो कुछ भी नहीं देखे, यही गया वृक्ष से और हमने देखा कि उखल अटक गया और इसने जोर लगाया तो दोनों वृक्ष उखड़ गए, इसी ने गिराया है। तो फिर डांटना चालू की कि क्या हो गया इन बच्चों को, इसके इस बच्चे के खींचने से वृक्ष गिर सकते हैं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कोई बलवान व्यक्ति भी उनको उखाड़े तो नहीं उखड़ सकते हैं, अरे बच्चा के खींचने से वृक्ष गिर जाएंगे। बहुत बड़ा तमाशा वहां लग गया। तो हम लोग कल सवेरे के सीटिंग में सुनेंगे नलकुबर और मणिग्रीव की जो स्तुति है भगवान की, बातचीत, और दूसरे सीटिंग में ब्रजवासियों की बातचीत सुनेंगे कृष्ण के इस लीला के विषय में। और श्री बलराम जी भी आएंगे, माँ यशोदा के प्रति बहुत रंज होंगे कि तुमने क्यों बांधा, इस तरह की बात कह रहे थे। जो जो था वो तो बहुत बार तो बात होने लगी, ये हुआ, हाँ, कैसे गिरा, क्या हुआ, ये हुआ, जब से बच्चा जन्म लिया है तब से विपत्ति आ रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। अंत में फाइनल मीटिंग बैठी इष्ट गोष्ठी और उपनंद महाराज ने कहा कि हम लोगों को यह स्थान छोड़ देना चाहिए, कोई दैत्य गिराया है। आज तो भगवान नारायण ने बचा लिया बच्चे को, लेकिन कल छत गिरा सकता है, कोई दैत्य कुछ गिरा सकता है, तो क्या होगा, इसलिए यह स्थान छोड़कर भागना चाहिए। लेकिन जो गिरा रहा था वो तो साथ में ही जाएगा, इनको पता नहीं था वो कहे कि यह स्थान ठीक नहीं है, ये नहीं है। वो तो बच्चे के प्रभाव को नहीं जानते थे, वात्सल्य भाव में थे। कहा बच्चे की रक्षा के लिए कोई बहुत बिगड़ घटना नहीं हो जाती, जब तक बच्चा पर कोई संकट नहीं आए तो हम लोगों को स्थान छोड़ देना चाहिए। बहुत सुंदर मीटिंग हुई है गोपों की, और उसके बाद वे गोकुल छोड़ दिए, अब वे वृंदावन आ गए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षिर्मे प्रियतम जदिमौ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि जब गीतं तन्महात्मना। जब श्री कृष्ण को माँ यशोदा उखल में बांध कर अपने घर के कामों में व्यग्र हो गई, तब भगवान ने उस आंगन में ही उगे हुए दो अर्जुन के वृक्षों के उद्धार की बात सोचा। तो भगवान यह विचार करने लगे, देवर्षि में प्रियतम, देवर्षि में मम प्रियतम, अतः प्रिय हैं, अतः देवर्षि के वाक्य का पालन करना, उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अतः मैं तथा साधयिष्यामि, उसको अवश्य पूरा करूंगा। जब गीतम तन महात्मना, जो उस महात्मा के द्वारा कहा गया है। इति इस प्रकार भगवान ने विचार किया। इत्यंतरेण अर्जुनयः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेश मात्रेण तिर्यगतमुलूखलम्। इस प्रकार विचार कर कृष्ण यमयः अर्जुनयः अंतरेण ययौ, दोनों वृक्षों के अंतर में गए, बीच में गए, मध्य में प्रवेश किए, उखल को घसीटते हुए ही गए। परंतु दोनों वृक्षों के बीच में कितना स्थान था? आत्मनिर्वेश मात्रेण, जिसमें वह बच्चा कृष्ण केवल प्रवेश कर सकता था। भगवान बहुत मोटे नहीं थे, बहुत ही सुंदर सुसज्जित शरीर वाले थे, परंतु वे तो निकल गए, उतनी ही भर जगह थी दोनों वृक्षों के बीच में। और उलूखलम त्रियगतम, परंतु उलूखल उखल तिरछा हो गया, तिरछा चल ही रहा था पहले से ही। त्रियगतम उलूखलम, तिरछा होकर के और अटक गया। कृष्ण उसको खींचे, दामोदरेण बाले न निष्कर्षता। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, बाले न निष्कर्षयतौ, निष्कर्षयता। वह बालक खींच रहा था उसको, उखल को अटके हुए, त्रिय गतम उलूखलम निष्कर्षयता बाले न खींचा। भगवान को ऐसा ऐसे लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा अनुभव है, पता नहीं क्यों अटक गया ये उखल, क्यों अटक गया, उन्होंने जोर लगाया। किस बालक ने जोर लगाया? दामोदर ने, दामोदरेण बालेन। दामोदर का अर्थ जिसके कमर में रस्सी बंधी हुई थी, उस बालक ने जोर लगाया। सुखदेव गोस्वामी यह नहीं कह रहे हैं कि अनंत ऐश्वर्यशाली भगवान जोर लगाए। दामोदरेण बालेन, जिसके उदर में दाम बंधा हुआ था, उस बालक ने जोर लगाया, खींचा, उस उखल को खींचा। वास्तव में वृक्षों को नहीं खींचे, उखल को खींचे, उलूखलम। परंतु खींचते ही तरसा, झटका देने से उत्कलित अंघ्रि बंधव, वृक्षों के जो चरण थे, मतलब जड़ें, वे उत्कलित हो गए, उखड़ गए। खींचने से उखड़ गए दोनों वृक्ष, उत्कलित अंघ्रि, अंघ्रि का अर्थ है चरण। तो किसी वृक्ष के चरण क्या है? चरण है उसकी जड़ें, मूल, जो पृथ्वी में फैली रहती है। पहले मोटी जड़ें होती हैं, इसके बाद शाखाएं होती हैं जड़ों की। तो ये सब उखड़ आए, एक भी बाकी नहीं रह गया जड़, छोटा छोटा पूरा उखड़ गया, उत्कलित अंघ्रि बंधव। पर विकमिता तिदेप स्कंध प्रवाल बिटपव कृतचंड शब्द। और वे बहुत विशाल वृक्ष थे, विशाल स्कंध, शाखाएं और प्रवाल थे। उखड़ने के बाद, इसके बाद दामोदर ने झटका दिया तो वे कांपने लगे, बहुत जोर से कंपन हुआ उसमें। इसके बाद आवाज करते हुए कृत चंड शब्द, चंड शब्द करते हुए, इस तरह से बहुत, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा वृक्षों के गिरने पर, तो उस तरह से विशाल आवाज करते हुए निष्पे ततु नितराम गिर गए, पूरा पूरा गिर गए, बहुत जोर की आवाज करके और गिर गए। और दोनों गिरे तो कृष्ण के तरफ ही गिरे, क्योंकि कृष्ण उधर ही खींच रहे थे। भगवान अपने तरफ ही दोनों को खींच रहे थे, इसलिए दोनों वृक्ष उधर ही गिरे। और दोनों गिरे, गिरते समय भी उनमें परस्पर जो दूरी थी उतनी ही थी जिससे कृष्ण बच जाए बीच में। और भगवान तो मुग्ध हो गए, क्या हो गया है। ऐसे बाहरी रूप से वे दिखा रहे थे कि ये क्या हो गया है, बिल्कुल मुग्ध हो गए। ऐसा तो दिखा नहीं रहे थे कि मैं वृक्षों को उखाड़ा हूँ या इनका उद्धार कर रहा हूँ, वो तो बाल क्रीड़ा कर रहे थे, तो इसीलिए मुग्ध थे, थोड़ा भयभीत जैसे हुए, एक क्यों गिर गए वृक्ष और बंधे बंधे ऐसे। और वृक्षों के अंतर में बहुत दूरी नहीं थी, थोड़ी ही दूरी थी, कृष्ण उसके बीच में बैठे। उसी समय क्या हुआ, वृक्षों से ही, वृक्षों के मूल से ही दो सिद्ध पुरुष निकले। तत्र श्रिया परमया ककुभ स्फुरंत सिद्धा उपेत कुजयो रिव जात वेदः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनाथं बद्धांजलि विरजसामिदमोचतो स्मः स्मः। तत्र वहीं पर उन वृक्षों से समस्त दिशाओं को आलोकित करते हुए दो सिद्ध पुरुष प्रकट हुए। सिद्ध, सिद्ध शब्द श्रीमद् भागवत में बहुत प्रसिद्ध है, देवताओं की यह एक जाति है, अथवा वे पुरुष जो सब तरह से कृतार्थ हो चुके हैं और उनके शरीर, उनकी भाषा, उनका सब कुछ प्रकृति से पार होता है, भगवान के पार्षदों को सिद्ध कहते हैं। और वैसे स्वर्ग में भी सिद्ध घुमा करते हैं, जैसे शनकादिक ऋषि जन सिद्ध माने गए। सिद्ध का अर्थ होता है बहुत तेजस्वी, जो सिद्ध हो जाते हैं, जिनका जीवन परफेक्ट हो जाता है, उनको बहुत सुंदर शरीर मिलता है। तो यहाँ सिद्ध कहने का अर्थ ये है कि बहुत सुंदर शरीर था, इतना तेज था नलकुबर और मणिगृह में, उन दोनों देवताओं में, कि अपनी कांति से ककुभ स्फुरंत, ककुभ दसों दिशाओं को जगमग करने लगे। भगवान वहां पर लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान से वह तेज नहीं निकल रहा था जो दसों दिशाओं को जगमग कर दे। भगवान अपने तेज को छिपाए हुए थे, बाल लीला कर रहे थे, परंतु उन दोनों सिद्धों के तेज से दिशाएं जगमगा गई स्फुरंत। और वे दोनों वृक्षों से ही निकले थे, कुजयो, कुज कहते हैं वृक्ष को, कु का अर्थ पृथ्वी और ज का अर्थ जन्म लेना, जो पृथ्वी से जन्म ले उसको कुज कहते। तो दोनों वृक्षों से उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद, मतलब प्रकट होने के बाद, वे फिर क्या किए, यह एक आश्चर्य की बात। उखल में बंधे हुए उस बच्चे के चरण में आकर के और साष्टांग प्रणाम किए। तो सही है, समझ लेना चाहिए कि वृक्षों को थोड़ा हटा करके प्रणाम किए होंगे, उनको जगह चाहिए बच्चे को प्रणाम करने के लिए। वे तो जान रहे थे कि ये बच्चा नहीं है, तो पर ब्रह्म है, परमात्मा भगवान है, परंतु भगवान वैसे ही उखल में बंधे थे। कृष्णम प्रणम शिरसा खिललो के नाथ, कृष्ण को प्रणाम किए, केना शिरसा, सिर से प्रणाम किए, मतलब सिर को झुकाए भगवान के चरण में, इससे यह सिद्ध हुआ कि और भी शरीर को झुकाए, दंडवत प्रणाम किए। इस पर श्रोताओं को आश्चर्य हुआ सुनकर, गंगा जी के तट पर, क्या हो गया था दोनों को, बच्चे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अखिल लोकनाथम, वे जानते थे कि कृष्ण समस्त लोकों के ईश्वर, ब्रह्मा शिव इंद्र आदि के भी वे ईश्वर स्वामी, अखिल लोकनाथ, अखिल का अर्थ संपूर्ण, लोक का अर्थ जीव, समस्त जीवों के नाथ हैं, जगन्नाथ जी भगवान है, वे जानते थे, यह जान करके उनको प्रणाम किया। कृष्णम प्रणम्य शिरसा अखिल लोकनाथम बद्धांजलि विरजसा इदमुचत स्म, दोनों विरज थे, रज से हीन, मतलब बहुत चमक रहे थे, बहुत साफ सुथरे थे, तेजस्वी थे। इसके बाद वे हाथ जोड़कर और कृष्ण से यह कहने लगे, भगवान से यह कहने लगे। अद्भुत प्रसंग है कि भगवान माँ यशोदा के द्वारा परतंत्र बनाए गए हैं, बंधे हैं, और दो सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रायः ऐसा होता है कि मुक्त पुरुष यानी बद्ध पुरुष भगवान की स्तुति करते हैं मुक्त होने के लिए, और भगवान नित्य मुक्त हैं। परंतु आज स्थिति दूसरी है कि मुक्त पुरुष बद्ध भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान तो अपना कर्म फल भोग रहे हैं, मटका फोड़े हैं तो उस दंड को भोग रहे हैं। तो जबरदस्ती माँ यशोदा ने बांधा है। तो भगवान की अद्भुत छवि है, अद्भुत लीला वैशिष्ट है, यही सब लीलाएं हैं जो भक्तों के चित्त को बहुत अधिक आकर्षित करती है। और भगवान धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। पहले तो थोड़ा भयभीत हुए कि वृक्ष न गिर जाए मुझ पर, और जब दो सिद्ध पुरुष उत्पन्न हुए तो उनको भी देख करके थोड़ा सकपकाए भगवान की, ये कौन है। पर वे स्तुति करने लगे तब भगवान हंसने लगे। दोनों भाई हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगी स्वामाद्य पुरुष पर व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। कृष्ण कृष्ण सबसे पहले यह संबोधन कर रहे हैं। क्यों कृष्ण कृष्ण कहते हैं, इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण नाम यह बहुत प्रिय है, मधुर है, इसीलिए दो बार बोले। और दो बार बोलने का मतलब है कई बार बोले होंगे, आवृत्ति विप्सा कहते हैं इसे। कृष्ण कृष्ण नाम के माधुर्य से दो बार बोले, अथवा अभी वे उखल घसीट रहे थे, खींच रहे थे, उलूखलम कर सती थे कृष्ण, जो उखल को आकर्षित करे, कर्षण करे, खींचे, वो कृष्ण है। कर्षती इति कृष्ण, जो कर्षण करे वो कृष्ण है। तो यहाँ पर तो प्रत्यक्ष कर्षण किए, उलूखल कर्षण किए, और कर्षण के द्वारा ही इनका उद्धार हुआ था, इसलिए भगवान का सबसे प्रिय नाम इनको कृष्ण ही लगा। कर्षण द्वारा इनका उद्धार हुआ था इसलिए यह नाम प्रिय है, कृष्ण कृष्ण। महायोगिन त्वमाद्य पुरुष पर, पहले प्रणाम किए ना ये लोग भगवान को, तो भगवान मानो आश्चर्य में हो गए कि मैं गोपाल बालक हूँ, गाय चराने वालों का पुत्र हूँ। गाय चराने वाले इस संसार में बहुत बुद्धिमान नहीं माने जाते हैं सामाजिक दृष्टि से, बुद्धिमान तो व्यापार करने वाले और शासन करने वाले माने जाते हैं, ये गाय बकरी चराने वाले कोई बहुत एडवांस नहीं माने जाते, उनको पशु के साथ रहना होता है, इसलिए अब पशु के साथ जो दिन भर रहेंगे उनका बुद्धि क्या विकसित, इनकी बुद्धि क्या विकसित होगी, दिन भर बकरी के साथ घूमे, गाय के साथ घूमे। तो सामाजिक दृष्टि से ये हीन माने जाते हैं। तो भगवान आश्चर्यचकित हुए, जब प्रणाम करने लगे तो भगवान ने मानो कहा कि मैं तो गोप बालक हूँ, नंद का पुत्र हूँ, आप लोग इतना बड़ा होकर के, देवता होकर के हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तब ये कहते हैं, नहीं महायोगी, आप महायोगी हैं। योग का अर्थ है अचिंत, अनंत, ऐश्वर्य। आप अनंत और अचिंत ऐश्वर्य से, ईश्वरताई से युक्त, जो उपाय जानते हैं, योग जानते हैं। योग का अर्थ है कठिन से कठिन कार्य को सिद्ध कर देने वाला उपाय। तो भगवान में अनंत शक्तियां हैं, जैसे विश्व सृष्टि करने की, विश्व का पालन करने की, विश्व का संहार करने की, इसके साथ ही साथ सबके हृदय में निवास करने की, सबके वे साक्षी हैं, अध्यक्ष हैं, सब कुछ हैं, इसको अचिंत अनंत ऐश्वर्य कहा जाता है। यदि हैं बालक 3 वर्ष के, तो 3 वर्ष के बालक को क्या देश काल का ज्ञान होगा। उस समय भगवान को तो ये भी पता नहीं होगा कि हस्तिनापुर किधर है कि नहीं। बाद में बच्चे जब पढ़ते हैं स्कूल में तो मैप बताया जाता है कि इधर है इधर, वो तो वो भी नहीं जानते होंगे, मनुष्य लीला की दृष्टि से कुछ भी नहीं जानते। परंतु भगवान बालक की लीला करे या कुछ भी, भगवान के जो ऐश्वर्य है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो स्वरूप भूत है, नित्य है, कभी उनसे तिरोहित नहीं हो सकती। हम मनुष्यों में जो शक्तियां देखते हैं वो उनमें रहती नहीं है शुरू से। जैसे आज कोई बच्चा है तो आगे चल करके जो पढ़ाई करेगा, जो पद प्राप्त करेगा, वह उसमें पहले से नहीं रहती, और अतिशय बूढ़ा हो जाने के बाद भी ज्ञान से नष्ट हो जाता है, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह स्वरूप भूत नहीं है जीव में। लेकिन भगवान का जो ऐश्वर्य है, उनका ये योग वैभव है, वह स्वरूप में है भगवान के साथ। इसीलिए चाहे वो बालक की लीला करें, चाहे बृहद बनकर वराह देव की लीला करें, चाहे भगवान नृसिंह देव की लीला करें, या भगवान कपिल देव, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, कुछ भी, सब समय वे पूर्ण भगवान हैं, पूर्ण ईश्वर हैं, कभी भी अपने ऐश्वर्य से अच्युत नहीं होते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। तो महायोगिन, आप महायोगिन हैं, अचिंत ऐश्वर्य से युक्त हैं। और भगवान ने कहा कि मैं क्या अचिंत ऐश्वर्य से युक्त हूं। अभी माँ ने ऐसा बांध दिया है कि ये खोलने के भी का भी ऐश्वर्य मुझ में नहीं, मैं परबस यहाँ पड़ा हुआ हूँ, कह रहे हैं कि अनंत ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य है जब मैं अपना ही बंधन नहीं खोल सकता। ए, नहीं नहीं, यह तो आपकी लीला है, आप पुरुष ही नहीं परह पुरुष हैं, आप सर्वावतारी हैं, अवतार नहीं है, अवतारी हैं। पुरुष शब्द से आदि अवतार पुरुष परस्य, परस्य परमेश्वर के आदि अवतार हैं पुरुष, भगवान कारणोदक्षायी। प्राय कहीं भी शास्त्रों में यदि पुरुष शब्द कहा जाए तो समझ लेना चाहिए कारणोदक्षायी, प्रकृति के अंतर्जामी, प्रकृति प्रवर्तक, इस विश्व के प्रथम निर्माता भगवान कारणोदक्षायी, उनको पुरुष कहते हैं। लेकिन हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अनंत ऐश्वर्यशाली, आप पुरुष ही नहीं हैं, आप प्रकृति के अंतर्जामी, उस पुरुष के भी आप कारण हैं, आप उनसे परे हैं, इसलिए आप परह पुरुष, आप परह पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। भगवान के 3 पुरुष अवतार हैं, कारणोदक्षायी, गर्भोदक्षायी, क्षीरोदक्षायी। इन तीनों को पुरुष शब्द से भागवत में बारंबार कहा गया है, पुरुष। क्यों पुरुष कहते हैं? क्योंकि ये पुरी में शयन करते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते हैं, जीवों के हृदय में शयन करते हैं, और प्रकृति के वे अंतर्जामी हैं, प्रकृति के भीतर अवस्थित होकर के प्रकृति को, माया को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण के कला है, एक कला विलास, एक अंश विशेष है। जस्यैक निःशोषित काल मथावलंब्य जीवन तिलोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णु महान स, यह जस्य कला विशेष हो गोविंद मादि पुरुषम तमहम नमामि। नलकुबर और मणिग्रीव बहुत भाग्यशाली थे कि इस रहस्य को ये जानते थे, ये परम पुरुष हैं, क्योंकि आद्य आप अवतारी हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद स्वयं अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, और वे सर्वादि हैं, सबके आदि। आद्यः परः पुरुषः त्वम्, इस कारण से हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, यह भाव है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन स्वम आद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्त मिदम विश्वम रूपन्ते ब्राह्मणा विदु। और आप परम पुरुष हैं, कारणोदक्षायी के रूप में इस जगत की सृष्टि करते हैं, वही पुरुष जो जगत की सृष्टि करते हैं उन पर ही आज बंधन लगा है। और हरिश्री जी तो कहते हैं मात्रा बंधन लगा हुआ है, मात्रा बंधन, मात्रा कहते हैं रूप रस गंध आदि को भी, और इस मात्रा का अर्थ है माता के द्वारा बंधन लगा हुआ है। तो भगवान ने एक लीला के द्वारा बहुत बहुत संकेत करते जाते हैं। हम लोग मात्रा बंधन में हैं और भगवान भी मात्रा बंधनम स्वीकृतवान, माँ के द्वारा बंधन स्वीकार किए। वही प्रभु जो मात्रा को, प्रकृति को, सबको प्रेरित करते हैं, आज वो बंधन की लीला कर रहे हैं। तो भगवान के आए स्वर्ग को बताने के लिए और यह कहने के लिए कि वास्तव में हम लोग जो गंगा जी में दुर्विलास कर रहे थे कैलाश के उपवन में, तो उसके भी कारण आप हैं। और देवर्षि नारद के मुख पर जो हमारे हित के लिए वचन निकले उसके भी आप ही प्रवर्तक। हे प्रभु, यदि हमने वैसा उठपटांग आचरण नहीं किया होता कैलाश में तो नारद जी साप नहीं दिए होते। तो आप हमारा उद्धार करना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों से वैसा कार्य आप कराए, नहीं तो उस तीर्थ क्षेत्र में भगवान शिव के धाम में हम कैसे ऐसा करते। तो हमारा वह कार्य ही करोड़ों भजन के समान हो गया आपकी कृपा से। यदि वैसे नग्न नहीं होते तो हमको साप नहीं मिला होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे ही साधन अपनाना चाहिए मनुष्यों को। लेकिन जो भी नलकुबर और मणिग्रीव के जीवन में घटना घटी है, तत्वतः वह भगवत इच्छा थी। भगवान ही वास्तव में ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर दिए, नहीं तो नलकुबर और मणिग्रीव कपड़ा पहन कर रहते, अच्छा से रहते, तो अब तक वहीं रह गए होते, भगवान का दर्शन नहीं मिला होता। पर भगवान हृदय के अंतर्जामी है, सब कुछ को कंट्रोल करते हैं। इसी बात को मुख्य रूप से कहने के लिए नलकुबर कह रहे हैं कि आप परम पुरुष, परम पुरुष हैं, आप सबके नियंता हैं। तो हमसे वैसा आचरण कराए और देवर्षि नारद जी के हृदय में बैठकर आपने उनके वचन के द्वारा हमारा श्रीमद भ्रंश किया और इसके बाद उनके वचन के अनुसार आप हमें दर्शन दिए, हमें यहाँ जन्म मिला। वास्तव में आप परम पुरुष हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। जन्म जन्म आपके ऋणी रहेंगे कि आपने हम पर ऐसी कृपा की। स्पष्ट हरीश्वर जी ने तो ये कहा है कि हम लोगों के जो, हम लोगों पर जो ये कृपा हुई है वास्तव में आपकी कृपा है। यहाँ तक कह दिए कि नारद जी के हृदय में बैठकर आप कृपा किए। श्लोक है इस प्रकार का, कहते हैं आवाभ्याम जदकारि दुर्विलसितम नास्मत् कृतम तत् प्रभो। हे प्रभु, हम लोगों ने जो दुर्विलसितम किया तो हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया था, आपने कराया था। और जत तद वक्त विनिर्गतम च वचनम तच्चा पिनय तत् कृतम। और जो नारद जी के मुख से हमारे लिए साप के वचन निकले वह भी उन्होंने नहीं किया, आपने किया। जत सर्वांतर वृत्ति वर्तक तया तम सर्वदा राज से तत्ते तादृश दृशोपकृतये मन्या महे आशयम्। हम तो आपके किए हुए उपकार को मानते हैं कि आपने नारद जी के मुख से श्राप दिया और आपने हमसे दुर्विलसित कराया, यह आशय है इस स्तुति का। और केवल आप कर्ता ही नहीं है इस विश्व के, वास्तव में आप उपादान कारण भी हैं। व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपमते ब्राह्मणा विदु। ब्राह्मणा जो वेदों के पारदर्शी विद्वान हैं, वे लोग जानते हैं कि यह व्यक्त या अव्यक्त विश्व, सूक्ष्म या स्थूल विश्व, यह आपका ही रूप है। आपका ही रूप का मतलब है आपकी ही शक्ति विश्व के रूप में परिणत हुई है। इस विश्व में दो प्रकार की चीजें हम लोग अनुभव करते हैं। कोई चीज बहुत बड़ी है, कोई वस्तु बहुत बड़ी है, और कोई बहुत सूक्ष्म है, छोटी है। तो बड़ी वस्तु को संस्कृत में व्यक्त कहते हैं और छोटी को अव्यक्त कहते हैं, अथवा सत और असत भी कहते हैं। कार्य और कारण भी इसको कहा जाता है, केवल शब्द का भेद है। हाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं इस संसार में जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, इसलिए उनको अव्यक्त कहते हैं। जैसे मन बुद्धि अहंकार दिखाई नहीं पड़ते हैं, हवा दिखाई नहीं पड़ती है, आकाश भी कोई दिखाई नहीं पड़ता है वास्तव में, तो इसको असत या अव्यक्त कहा गया। यह जगत व्यक्त होता है तो इसके कई कारण हैं, रूप रस गंध आदि कारण हैं, उनसे जगत व्यक्त होता है। अतः इस विश्व को दो भागों में कहते हैं, व्यक्ता व्यक्त, व्यक्तम विश्वम अव्यक्तम विश्वम। जो कुछ भी संसार में है वास्तव में आप ही हैं, आपके अलावा और कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपकी ही शक्ति से सब कुछ बना हुआ है, आप ही सर्वकर्ता धरता है, सर्वत्र व्यापक है। बहुत सुंदर स्तुति है श्रीमद् भागवत में, ऐसी बातें सैकड़ों जगह पर कही गई, भगवान इस जगत के कारण हैं, यह व्यक्त अव्यक्त विश्व उनका ही रूप है। कभी कभी किसी भागवत प्रेमी के मन में यह बात उठ सकती है कि इन बातों की इतनी आवृत्ति की क्या आवश्यकता है,